ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाप दादा की मुरली, रोज की मुरली, नई नई बातों से हम अवगत होते ही रहते हैं। बाबा कितनी नई बातें सुनाते हैं। आज भी बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर बातें सुनाई है और हर एक अपने आप से वो लगाए, ये बाबा ने क्या रचा है, हम सब कहाँ बैठे हैं। बाबा कहते हैं ये है राजस्व अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, हम इस यज्ञ में बैठे हैं, है ना। रोज बाबा भिन्न भिन्न नाम बताते, आज बाबा ने यज्ञ को बहुत महत्व दिया है। तो यज्ञ में क्या होता है, स्वाहा 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 यही करते ना, तो वहां क्या स्वाहा करते हैं, जव तिल और घी। और यहां बाबा कहते हैं जव तिल घी कौन सा है, ये तुम्हारा तन मन और धन। तन वो जव की तरह है, मन मना तिल सूक्ष्म है, और धन घी लिक्विड फॉर्म है ना। तो ये तन मन धन तुम बाबा को स्वाहा करते हो और बाबा फिर रिटर्न में क्या करते हैं, स्वाहा करते हो माना तुम बाबा पर बलिहार जाते हो तन मन धन से। तो फिर बाबा तुम पर 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। अब सोचो हम एक जन्म केवल बलिहार जाते हैं और बाबा 21 जन्मों तक बलिहार ही रहते हमारे ऊपर, क्योंकि इतनी प्राप्ति करा देते हैं। लेकिन फिर बाबा साथ में ये भी कहते हैं बच्चे उसका आधार क्या है, पवित्रता। अगर ऐसे ही कह दिया बाबा ये तन मन धन पर हम स्वाहा करते हैं लेकिन पवित्र नहीं बनते, तो बाबा वो स्वीकार नहीं करते न, कोई बाबा फिर 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते। तो बलिहार जाने का मतलब केवल ये नहीं बाबा ये सब आपका, लेकिन साथ में इतना पवित्र जीवन भी हो, तब बाबा स्वीकार करते हैं, है ना। स्वीकार बाबा तभी करेंगे जब इतनी पात्रता होगी, नहीं तो कई दान पुण्य करते हैं दुनिया में, क्या बड़ी बात है। लेकिन भगवान स्वीकार करे उसके लिए चाहिए पवित्रता। तो आज बाबा ने उस पर भी जोर दिया है। बाबा ने और भी कई सुंदर बातें बताई, हम सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 6/5/2026 है। मीठे बच्चे जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। ये भी बाबा की भी शर्त है। हम तो बाबा को कहते बाबा ये सब तुम्हारा, फिर बाबा कहते बच्चे रखो अपने पास संभालो, परंतु मेरा समझ कर चलो, ट्रस्टी होके चलो। परंतु वो तो ठीक, पर हम पवित्र नहीं बनते तो वो भी स्वीकारा नहीं जाता। तो मीठे बच्चे जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। तो अपने दिल से पूछो हम कितना पावन बने हैं। कर्म से भले हो पर साथ साथ मन वचन भी बहुत जरूरी है ना। तो अपने दिल से पूछो हम कितना पावन बने हैं। प्रश्न है तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो। हम सब यहाँ कौन बैठे हैं, बाप पर बलि चढ़े हुए ना ऐसे ही बैठे ना, बाबा ये तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। केवल गाते नहीं थे, गाते तो थे लेकिन प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं किया। अभी हम प्रैक्टिकल में अनुभव करते, ये सब बाबा का है। तो अगर बाबा का है तो फिर कल भी उस दिन भी कहा बाबा ने श्रीमत पर चलना पड़े, और सबसे बड़ी श्रीमत तो यही है, पवित्र बनो योगी बनो। अगर वो पालन नहीं करते तो फिर बाबा कहती ये बलिहारी भी स्वीकारी नहीं जाती। तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो, क्यों बलि चढ़ते हो बाप पर, क्या कारण है? उत्तर है क्योंकि तुम जानते हो कि अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं, सब कुछ अपना बच्चों पर लुटा देते हैं। तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। तुम बच्चों को ये भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में एक तो दो कारण से हम बलिहार जाते हैं। एक तो हम समझते हैं कि हम बलिहार जाएंगे तो बाबा भी हम पर बलिहार जाएंगे, और दूसरा कारण है क्यों बलिहार जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में क्यों बलिहार जाते हो, क्योंकि तुम बच्चों को मालूम है कि इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है, सारी दुनिया स्वाहा होनी है, विनाश ज्वाला प्रज्वलित यह इसी यज्ञ से होनी है। तो सब मनुष्य मात्र इस यज्ञ में स्वाहा होने ही है, तो इसलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। अंत में तो सब स्वाहा होना ही है लेकिन वो सफल नहीं हुआ ना, हम जो कुछ भी करते फिर बाबा कहते सफल होता है। अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। तो गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी, बाबा ने कर्मों की बहुत गुह्य गति भी आज समझाई है। तो मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप और पुण्य है तेरे जीवन में। ओम शांति, ओम शांति। शिव भगवानोवाच, जरूर अपने बच्चों प्रति ही नॉलेज सिखाते हैं व श्रीमत देते हैं। हे बच्चों व हे प्राणी, है ना, मुखड़ा देख ले प्राणी, तो हे बच्चों व हे प्राणी, शरीर से प्राण निकल जाते हैं व आत्मा निकल जाती है, एक ही बात है। प्राण माना आत्मा, तो मनुष्य जब आत्मा तन में है तब कहेंगे प्राणी, आत्मा प्राण निकल गई तो फिर तो डेड बॉडी है। शरीर से प्राण निकल जाते हैं व आत्मा निकल जाती है, एक ही बात है। तो हे प्राणी अथवा हे बच्चे, तुमने देखा कि मैं, तुमने देखा, बाबा पूछ रहे हैं, हे बच्चे हे प्राणी, तुमने देखा कि मेरे जीवन में कितना पाप था और कितना पुण्य था, देखा हा? मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, तो देखा, हिसाब तो बता दिया है तुम्हारे जीवन में। क्या हिसाब बाबा ने पाप और पुण्य का बताया है कि तुम्हारा हिसाब बता दिया है कि तुम्हारे जीवन में आधा कल्प पुण्य और आधा कल्प पाप होते हैं। पुण्य का वर्षा बाप से मिलता है जिसको राम कहते हैं। राम निराकार को कहा जाता है, न कि सीता वाला राम, त्रेता युग का सीता वाला राम उसको नहीं हम कहेंगे। हाँ, बाबा कहते राम, सच्चा राम तो एक निराकार परमात्मा है। तो पुण्य का वर्षा बाप से मिलता है जिसको राम कहते हैं। राम निराकार को कहा जाता है, न कि सीता वाला राम, त्रेता युग वाला राम या सीता वाला राम, वो श्री राम है। श्री राम, शिव बाबा को श्री टाइटल नहीं देंगे, श्री श्री। तो बाबा कहते हैं न कि सीता वाला राम। तो अब तुम बच्चे जो आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी बुद्धि में आया है बरोबर आधा कल्प हम पुण्य आत्मा थे ना, आधा कल्प सत्य त्रेता में हम पुण्य आत्मा कहलाते थे, फिर आधा कल्प पाप आत्मा बने, अभी पुण्य आत्मा बनना है। कितना पुण्य आत्मा बनी है वो हर एक अपने दिल से पूछे। पाप आत्मा बन गए, पुण्य आत्मा बनना है तो कितना पुण्य आत्मा बने वो हर एक अपने दिल से पूछे। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे प्रश्न है ना, कैसे बनेंगे, बनना है पर कैसे बनेंगे पुण्य आत्मा, वो भी बाबा ने समझाया है। बाबा ने जो श्रीमत दी है वो श्रीमत से ही तो पुण्य आत्मा बनेंगे ना, तो वो भी बाप ने समझाया है। अब यज्ञ तप आदि से तुम पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे। द्वापर कलयुग में तो कितने यज्ञ तप दान पुण्य बहुत कुछ किया लेकिन पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे। वो है भक्ति मार्ग, इससे कोई भी मनुष्य पुण्य आत्मा नहीं बनते हैं। बड़ी बात, कोई भी मनुष्य आत्मा पुण्य आत्मा नहीं बने है जो कुछ भी भक्ति में किया। अभी तुम बच्चे समझते हो हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं, आसुरी मत से पाप आत्मा बनते बनते सीढ़ी उतरते ही आए हैं। कितना समय हम पुण्य आत्मा बनते हैं व सुख का वर्षा लेते हैं ये भी किसको पता नहीं है। उस बाप को याद तो सभी मनुष्य करते हैं, उनको ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे और किसको भी परमात्मा नहीं कह सकते हैं सिवाय एक के। भल इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, ब्रह्मा बाबा को हम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, परंतु प्रजापिता को कभी भक्ति मार्ग में याद नहीं करते। केवल दो मंदिर ही है ना ब्रह्मा के, परंतु प्रजापिता को कभी भक्ति मार्ग में याद नहीं करते हैं। याद सभी फिर भी निराकार बाप को ही करते हैं। कैसे याद करते हैं, सब धर्मों में याद करते हैं, ओ गॉड फादर, हे भगवान, ये अक्षर मुख से निकलते हैं, एक को ही याद करते हैं। मनुष्य अपने को गॉड फादर कह न सके, न ही ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने को गॉड फादर कह सकते। ब्रह्मा भी नहीं कह सकता है मैं भगवान हूँ, विष्णु भी नहीं, शंकर भी नहीं, वो गॉड द फादर नहीं है, केवल एक शिव ही गॉड द फादर है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी अपने को गॉड फादर नहीं कह सकते, उनके शरीर का नाम तो है ना, एक ही गॉड फादर है, उनको अपना शरीर नहीं है। भक्ति मार्ग में भी शिव की बहुत पूजा करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमसे बात करते हैं। ये मुरली क्या है, शिव बाबा इस शरीर ब्रह्मा द्वारा हमसे बात करते हैं। हे बच्चों, कितना प्यार से कहते हैं, हे बच्चों, कितना प्यार से कहते हैं, समझाते हैं, मैं सर्व का पति पावन सदगति दाता हूँ। मनुष्य बाप की महिमा करते हैं ना, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है। भगवान की महिमा तो बहुत करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है। क्या नहीं पता कि ये 5000 वर्ष बाद आते हैं। 5000 वर्ष पहले भी भगवान आए थे, अभी 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं। जरूर जब कलयुग का अंत होगा तभी तो आएंगे। अभी कलयुग का अंत है तो जरूर अब आया हुआ है। तुमको श्रीमत मिलती है, ये श्रीमत किसकी है? भगवान की है, तो जरूर वो आया हुआ है। श्रीमत कोई श्री कृष्ण की नहीं है, श्री कृष्ण की आत्मा भी श्रीमत से ही 100 देवता बनी थी। फिर 84 जन्म लेते, अब तुम आसुरी मत के बने हो। तो बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ, कब आता हूँ? जब तुम्हारा ये चक्र पूरा होता है। तुम जो शुरू में आए थे, अब चक्र के आदि में तुम बच्चे आए थे, तो तुम जो शुरू में आए थे अब जर्जरी भूत अवस्था में हो। झाड़ पुराना जर्जरी भूत होता है तो सारा झाड़ ऐसा हो जाता है ना, ऐसे नहीं कि कुछ जर्जरी भूत अवस्था में है झाड़ और बाकी थोड़ा नया है, नहीं, सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था में हो जाता है। तो बाप समझाते हैं तुम्हारे तमो प्रधान बनने से सब तमो प्रधान बन गए, केवल हम नहीं बने जो आदि में आए थे, पर सब तमो प्रधान बन गए। ये मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है, इसको उल्टा झाड़ कहते हैं। इसका बीज ऊपर है, उस बीज से तो सारा झाड़ निकलता है। तो मनुष्य कहते भी है ओ गॉड फादर, आत्मा कहती है। आत्मा का नाम तो आत्मा ही है, आत्मा शरीर में आती है तो शरीर का नाम रखा जाता है। खेल चलता है, जब तक शरीर में ना आए आत्मा तब तक खेल कैसे चले। आत्मा शरीर में आती है तब खेल चलता है। यहाँ आत्माओं की दुनिया में खेल नहीं चलता है, खेल आत्मा और शरीर का जब मेल हो तब चलता है। वहाँ केवल आत्मा ही है तो खेल नहीं चलता। खेल की जगह ये है इस यह सृष्टि। नाटक में रोशनी आदि सब होती है ना, नाटकशाला है तो उसके लिए बल्ब लगाते हैं ना, फोकस लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो ये भी नाटकशाला की बत्तियां कौन सी है? सूरज चांद सितारे। तो बाबा कहते हैं नाटक में रोशनी आदि सब होती है, बाकी जहाँ आत्माएं रहती है वहाँ सूरज चांद सितारे नहीं है, क्योंकि वो नाटकशाला नहीं है। नाटकशाला में ये बत्तियां होती है, तो बाबा कहते हैं वही फिर नाटकशाला है। वहाँ सूर्य चांद नहीं है, ड्रामा का खेल नहीं चलता है। रात दिन भी यहाँ होते हैं, अब परम धाम में रात दिन भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ एक ही स्वयं प्रकाशित, स्वयं वो भी स्वयं वो है ना, स्वयं प्रकाशित ब्रह्ममय तत्व है, उसको अलग से कोई रोशनी कहाँ से आती नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है। तो बाबा कहते रात दिन यहाँ होते हैं, सूक्ष्म वतन व मूल वतन में रात दिन नहीं होते हैं। कर्म क्षेत्र ये है, इसमें मनुष्य अच्छे कर्म भी करते हैं तो बुरे कर्म भी करते हैं। सत्युग त्रेता में तो अच्छे कर्म होते हैं, क्यों वहाँ अच्छे कर्म होते हैं? क्योंकि वहाँ 5 विकार रूपी रावण का राज्य ही नहीं है। तो बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म का राज बताते हैं। कर्म तो करना ही है, कर्म से कोई भाग नहीं सकता है ना, ये सृष्टि है ही कर्म क्षेत्र। तो यहाँ इस सृष्टि पर आए हैं तो कर्म तो करना ही है, ये कर्म क्षेत्र है। सत्युग में जो मनुष्य कर्म करते हैं वो अकर्म हो जाते हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, उनको हेवन कहा जाता है। इस समय हेवन है नहीं, है ना, अभी तो हेवन नहीं कहेंगे। सतयुग में एक ही भारत था और कोई खंड नहीं था। हेवनली गॉड फादर कहते हैं तो बाप जरूर हेवन ही रचेंगे। हेवनली गॉड फादर कहते हैं तो जरूर बाप हेवन ही रचेंगे। ये सब नेशन वाले जानते हैं, सब धर्म वाले, सब देश वाले जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। सब जानते हैं कि भारत सबसे प्राचीन देश है। पहले पहले सिर्फ भारत ही था ये कोई नहीं जानते हैं। प्राचीन देश है लेकिन कई अपने को भी प्राचीन समझते हैं ना, लेकिन बाबा कहते पहले पहले भारत ही था और कोई था ही नहीं, ये कोई नहीं जानते। अभी तो नहीं है ना, अभी तो नहीं है, भारत के साथ कितने और देश है, अभी तो नहीं है। ये है ही 5000 वर्ष की बात। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। रचयिता जरूर रचना रचेंगे, तमो प्रधान बुद्धि होने कारण इतना भी नहीं समझते। वो रचयिता है तो पहले तो नई रचना होगी, तो वो नई रचना तो सतो प्रधान ही होगी ना। तो बाबा कहते तमो प्रधान बुद्धि होने कारण इतना भी नहीं समझते हैं। भारत तो सबसे ऊंच खंड है, पहली बिरादरी है। भारतवासी सबसे पहले आते ना, जो सतयुग का थुर है उसमें जो भी आत्माएं हैं वो सब देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं परम धाम में, तो वो सबसे पहले इस सृष्टि मंच पर आती है। तो पहली बिरादरी वंशावली, पहली बिरादरी है मनुष्य सृष्टि की। पहली बिरादरी कौन सी हो गई? देवी देवता धर्म। ये भी ड्रामा बना हुआ है, साहूकार गरीबों को मदद करते हैं, ये भी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी साहूकार गरीबों को दान करते हैं, परंतु ये तो है ही पतित दुनिया। अब कितना भी दान करे पर है पतित मनुष्य, पतितों को दान करते हैं तो क्या पुण्य बनेगा, कितना बनेगा। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में साहूकार गरीबों को दान करते हैं, परंतु ये है ही पतित दुनिया। तो जो कुछ भी दान करते हैं, तो जो कुछ भी दान करते हैं पतित ही करते हैं। पावन तो यहाँ कोई है ही नहीं, तो पतित है करते हैं, और जिनको करते हैं वो भी पतित हैं। तो पतित ही करते हैं, जिसको दान करते हैं वो भी पतित हैं। तो पतित पतित को दान करेंगे उनका फल क्या पाएंगे? बड़ी समझ की बात है ना, पतित पतित को दान करेंगे तो उसका फल क्या पाएंगे। भाई कितना भी दान पुण्य करते आए हैं फिर भी गिरते तो आए हैं ना। अगर सचमुच वो पूरा पुण्य बनता होता तो ऊपर चढ़ते, लेकिन गिरते ही आ रहे हैं, फिर भी गिरते आए हैं। भारत जैसा दानी खंड और कोई नहीं होता, सच्ची बात है ये। भारत में जितना दान पुण्य होता है ना, और किसी धर्म में किसी देश में नहीं होता। भारत जैसा दानी खंड और कोई नहीं होता। इस समय तुम्हारा जो भी तन मन धन है सब इसमें स्वाहा करते हो। इसको कहा जाता है, जहाँ स्वाहा करते हैं इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। आत्मा कहती है ये जो पुराना शरीर है इनको भी यहाँ स्वाहा करना है, क्योंकि तुम जानते हो, क्या जानते हैं, कि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इसमें स्वाहा होते हैं। वैसे भी सबको स्वाहा होना है, तो बाबा कहते हैं तुम जीते जी स्वाहा करते हो अपना तन मन धन। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इसमें स्वाहा होते हैं, इसीलिए हम क्यों नहीं खुशी से बाबा पर बलि चढ़ जाएं। आत्मा कहती है हम बाप को याद करते हैं, कहते भी आए बाबा आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, क्योंकि क्यों आप आएंगे हम बलिहार जाएंगे, क्योंकि अब हमारे बलिहार जाने से आप फिर 21 जन्मों के लिए बलिहार जाएंगे हमारे ऊपर। ये सौदागरी है, ये सौदा है। हम भगवान पर बलिहार जाते हैं तो फिर बाबा 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं, ये सौदागरी है। हम आप पर बलिहार जाते हैं तो आप भी 21 बार बलिहार जाते हो। तो बाप कहते हैं जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनी है बलिहार तो जाते हैं, हम समझते हैं हम बाबा पर बलिहार गए, पर जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक हम बलिहारी स्वीकार नहीं करते। भगवान भी बड़ा ऐसे ही ना, सौदागर तो है लेकिन बहुत बड़ा श्राप है, ऐसे नहीं कि किया चलो बलिहारी स्वीकार हो गई। तो जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक हम बलिहारी स्वीकार नहीं करते। बाप कहते हैं मां एकम याद करो तो आत्मा प्योर बन जाएगी। बाप को भूलने से तुम कितने पतित दुखी हुए हो। मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर क्या करते हैं दुनिया में, जब मनुष्य बहुत दुखी होते हैं ना, अपने देश में उनको ठीक पना नहीं मिलती, प्राप्ति नहीं होती है, तो मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर शरणागति लेते हैं, दूसरे देश में जा करके शरण लेते हैं। अभी तुम 63 जन्म रावण से बहुत दुखी हुए हो, एक सीता की बात नहीं, सब सीताएं हैं, जो भी मनुष्य मात्र है सब सीताएं हैं। भाई लोग आप भी तो सीता हो ना, कि आप सोचेंगे हम तो राम हैं, नहीं सब सीताएं हैं, सब सीताएं हैं जो भी मनुष्य मात्र है। रामायण में तो कहानी लिख दी है, सीता को रावण ने शोक वाटिका में डाला, वहां रामायण में तो दिखाते अशोक वाटिका थी रावण की, पर बाबा कहते रावण की अशोक वाटिका थोड़ी है, शोक वाटिका है। सीता को रावण ने शोक वाटिका में डाला, वास्तव में बात सारी इस समय की है, सब आत्मा रूपी सीताएं रावण की शोक वाटिका में हैं। सभी रावण अर्थात 5 विकारों की जेल में है, तो शोक वाटिका कहो या जेल कहो बात एक ही है, 5 विकारों की जेल में है, इसलिए दुखी हो पुकारते हैं हमको, इस हमको इनसे छुड़ाओ, आत्माएं पुकारती है हमको इनसे छुड़ाओ। अब ये एक की तो बात नहीं है ना, एक सीता ने तो केवल नहीं पुकारा ना कि हमको इस शोक वाटिका से छुड़ाओ, सब सीताएं पुकारती है। तो बाप समझाते हैं सारी दुनिया रावण की जेल में है, रावण राज्य है ना, कहते भी है राम राज्य चाहिए, अब ये भी सिद्ध करता है कि रावण राज्य है, क्योंकि चाहना है राम राज्य हो, तो कहते भी हैं कि राम राज्य चाहिए। गांधी ने भी कहा, सन्यासी कभी ऐसे नहीं कहेंगे राम राज्य चाहिए, क्यों सन्यासी नहीं कहेंगे राम राज्य चाहिए, बाकी गृहस्थी क्यों कहते, केवल सन्यासी क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सुख को तो काग विष्ठा समान समझते हैं, तो वो थोड़ी कहेंगे कि राम राज्य चाहिए, क्योंकि राम राज्य माना संपूर्ण सुख, तो वो तो समझते ही नहीं है सन्यासी कि संपूर्ण सुख भी यहाँ हो सकता है। तो बाबा कहते सन्यासी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि राम राज्य चाहिए, भारतवासी कहेंगे, वो भी जो परिवार में है, भारतवासी कहेंगे इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, और ब्रांचेस सब है, जो थुड़ है वो बाबा कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी और ब्रांचेस बहुत है, ताल तालियां सब बहुत है, सत्युग और ब्रांचेस है, सत्युग था एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वो नाम ही बदला हुआ है, अपने धर्म को भूल फिर और धर्मों में कन्वर्ट होते जाते हैं। मुसलमान आए, कितने हिंदुओं को अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया। मुगल साम्राज्य जब आया तो कितने हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। फिर क्रिश्चियंस आए तो कितनों को क्रिश्चियन बना दिया। क्रिश्चियन धर्म में भी बहुत कन्वर्ट हुए हैं, इसलिए भारतवासियों की जनसंख्या कम हो गई है। नहीं तो भारतवासियों की जनसंख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, तो बाप कहते हैं तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वो सबसे ऊंचा है। नशा चढ़ता है ना, हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म, सनातन धर्म सबसे ऊंचा है। सतो प्रधान थे, अब वही बदल कर फिर तमो प्रधान बने हैं। अब तुम बच्चे समझते हो ज्ञान सागर पतित पावन जिसको बुलाते हैं वो सम्मुख हमें पढ़ा रहे हैं। उसका भी नशा है, जिसको दुनिया पुकार रही है वो सम्मुख हमको पढ़ा रहे हैं। वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। क्राइस्ट की ऐसी महिमा नहीं करेंगे। किसी भी धर्म पिता को ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण को भी ज्ञान का सागर, पतित पावन नहीं कहा जाता है। सागर एक होता है, चारों तरफ ऑल राउंड सागर ही सागर है। तीन हिस्सा पानी है इस धरती का और एक हिस्सा धरती है, तो चारों ओर पानी पानी, सागर ही सागर, चारों तरफ ऑल राउंड सागर ही सागर है। दो सागर तो नहीं होते ना, पानी तो वही है तो सागर तो एक ही है। ये मनुष्य सृष्टि का नाटक है, इसमें सबका अलग अलग पार्ट है। बाप कहते हैं मेरा कर्तव्य सबसे अलग है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझे ही तुम पुकारते हो हे पतित पावन। फिर कहते हो ओ लिबरेटर, पहले कहते हो पतित पावन, पावन बनाओ, फिर कहते हो लिबरेटर, मुक्तिदाता, तो मुक्त करो, पावन बना कर। फिर कहते हो लिबरेटर, तो बाबा कहते हैं दो सागर नहीं होते हैं। ये मनुष्य सृष्टि का नाटक है, इसमें सबका अलग अलग पार्ट है। तो बाप कहते हैं मेरा कर्तव्य सबसे अलग है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझे ही पुकारते हैं पतित पावन, फिर कहते लिबरेटर। लिबरेटर लिबरेट भी किसे करते हैं? पतित पावन तो कहा भाई आत्माओं को पावन बनाते, फिर लिबरेटर है तो लिबरेट माना मुक्त किससे करते हैं, ये भी कोई नहीं जानते। किससे मुक्त करते हैं? जन्म मरण से तो मुक्त नहीं करते ना, रावण से, दुखों से मुक्त करते हैं, ये भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो हम सतयुग त्रेता में बहुत सुखी थे, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी तो है ही नर्क, इसलिए पुकारते हैं दुख से लिबरेट कर सुख धाम में ले चलो। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे, पहली बात बाबा ने कहा सन्यासी कभी नहीं कहेंगे राम राज्य चाहिए। फिर दूसरी बात सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, सन्यासी कभी नहीं कहेंगे। किसी भी सन्यासी के लिए कभी नहीं कहा जाता कि वो स्वर्गवासी हुआ, वो क्या कहेंगे? ब्रह्मलीन हुआ, मोक्ष को पाया। पर स्वर्गवासी हुआ ये किसी सन्यासी के लिए नहीं कहा जाता। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे फलाना स्वर्गवासी हुआ, वो फिर कहते हैं पार निर्वाण गया। विलायत में भी कहते हैं जो गृहस्थी होंगे वो कहेंगे, चाहे वो भारत में रहते हो चाहे विदेश में रहते हो, जो गृहस्थी होते हैं परिवार में रहते हैं वो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। तो विलायत में भी कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, स्वर्ग पधारा स्वर्ग सिधारा, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। समझते हैं कि गॉड फादर के पास गया, क्रिश्चियन यही समझते हैं ना कि गॉड जो फादर है वो हेवन में है, इसलिए वो हेवन में गॉड फादर के पास गया। हेवनली गॉड फादर कहते हैं बरोबर हेवन था इसी सृष्टि पर, अब नहीं है, हेल के बाद हेवन चाहिए, गॉड फादर को यहाँ आकर हेवन स्थापन करना है, गॉड फादर को यहाँ आकर हेवन स्थापन करना है। सूक्ष्म वतन मूल वतन में तो कोई हेवन नहीं होता है, स्वर्ग उन दोनों धामों में नहीं होता, केवल इस साकार दुनिया में होता है। सूक्ष्म वतन मूल वतन में कोई हेवन नहीं होता, जरूर बाप को यहाँ ही आना पड़े। तो बाप कहते हैं मैं आकर प्रकृति का आधार लेता हूँ, मेरा जन्म मनुष्यो माफिक नहीं है, मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। तुम सभी गर्भ में आते हो, हम सभी आत्माएं गर्भ में आती है। सत्युग में गर्भ महल होता है क्योंकि वहाँ कोई विकर्म होता नहीं जो सजा भोगे, यहाँ जो भी ऐसा पाप करेगा उसको तो जेल में डालेंगे ना। तो बाबा कहते वहाँ कोई विकर्म होता नहीं जो सजा भोगे, इसीलिए उसको गर्भ महल कहा जाता है। गर्भ में तो जाएगी आत्मा लेकिन वो जेल नहीं होगा, वो गर्भ महल होगा। यहाँ विकर्म करते हैं जिसकी सजा भोगनी पड़ती है, इसीलिए गर्भ जेल कहा जाता है। यहाँ रावण राज्य में मनुष्य पाप करते रहते हैं, ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया, वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं की दुनिया को क्या नाम देते हैं? स्वर्ग। और पाप आत्माओं की दुनिया को नाम देते हैं नर्क। तो वो स्वर्ग पुण्य आत्माओं की दुनिया है, इसीलिए कहते हैं स्वर्ग है पुण्य आत्माओं की दुनिया, गर्भ महल है। उसकी निशानी क्या है? सत्युग गर्भ महल है, उसकी निशानी क्या है? पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण दिखाया है, ये गर्भ महल की निशानी है। तो दिखाते श्री कृष्ण सागर, जैसे पीपल के पत्ते पर सागर से निकला और फिर उसमें दिखाते वो पैर का अंगूठा मुंह में चूस रहा है, पैर का अंगूठा मुंह में चूस रहा है, माना कि जैसे वो स्वर्ग वो गर्भ महल में है। और गर्भ महल में फिर ताज सिर पर, जन्म से ही ताज, तो ये किसका हो सकता है? श्री कृष्ण का। तो अभी तो नहीं कहेंगे, अभी तो जेल में है, जन्म भी कैसे लेते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए कहते हैं पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया, ये श्री कृष्ण की महिमा दिखाते हैं। सत्युग में गर्भ में दुख नहीं होता है, तो बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, जिसका फिर शास्त्र गीता बनाया। गीता में पूरा वर्णन है, खुद ही भगवान कहते गीता में है कि मैं कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति समझाता हूँ। तो जिसका फिर शास्त्र गीता बनाया है, परंतु उसमें शिव भगवानों वाच के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। अभी भारत रावण से श्रापित है, भगवानों वाच अभी भारत रावण से श्रापित है, इसीलिए दुर्गति हो गई है। ये बड़ा श्राप भी ड्रामा में नूंदा हुआ है, ये बड़ा श्राप है, रावण ने सबको श्रापित कर दिया है, इसलिए बाबा कहते हैं ये बड़ा श्राप भी ड्रामा में नूंदा है, नूंदा हुआ है। बाप आकर फिर वर देते हैं, वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं? आयुष्वान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव। तो भगवान आके वरदान देते हैं और रावण आकर श्रापित करते हैं। तो ये भगवान वरदान देते हैं, तो सतयुग में ये सारे वरदान होंगे, आयु भी लंबी होगी, पुत्र तो जरूर होगा ही, हर एक को होगा, और तीसरा संपत्तिवान भव। ये तीनों ही वरदान हर आत्मा को होंगे सतयुग में। सभी सुख का वर्षा देते हैं, तुमको आकर के पढ़ाते हैं बाबा, जिस पढ़ाई से तुम देवता बनते हो। ये नई रचना हो रही है, हम सब क्या है, नई रचना। ब्रह्मा द्वारा तुमको बाप अपना बनाते हैं, गाया भी जाता है प्रजा पिता ब्रह्मा, तुम उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो। दादी का वर्षा बाप द्वारा लेते हो, शिव बाबा ग्रैंडफादर, उनका वर्षा बाप द्वारा, ब्रह्मा बाप द्वारा लेते हो। आगे भी लिया था बाबा, कभी नहीं भूलते, ये जो कुछ भी अभी होता आगे भी किया था, आगे भी लिया था, अब फिर बाप आया है। बाप के बच्चे तो फिर बाप के पास जाने चाहिए, हम बाप के भगवान के बच्चे हैं तो भगवान के पास जाने चाहिए, परंतु गाया हुआ है ऐसे नहीं भगवान के पास जाएंगे, पहले नहीं रचना भगवान रचते हैं, परंतु गाया हुआ है प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि की स्थापना होती है, तो यहाँ ही होंगी ना। हाँ, ऐसे नहीं सीधा आत्माएं वापस चली जाएगी, पहले नई सृष्टि की स्थापना होती है ब्रह्मा द्वारा, वो तो यहीं होंगी ना। आत्मा के संबंध में कहेंगे हम सब भाई भाई हैं, और प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनने से तुम भाई बहन बनते हो। इस समय तुम सब भाई बहन हो, इसलिए उस दिन भी बाबा ने कहा ना, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आजकल वैसे ही एड्रेस करते हैं तो यही कहते हैं ना, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो तुम इस समय सब भाई बहन हो, तुमने बाप से वर्षा लिया है, तुमने बाप से वर्षा लिया था, अब भी बाप से वर्षा ले रहे हो। तो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुम आत्मा को शिव बाबा को याद करना है, याद करने से ही क्या होगा, तुम पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, पावन बनने का एक ही उपाय है, इस समय भगवान को याद करो, वो भी उनको सही नाम रूप समझ करके सही रूप में याद करो, तब पावन बनेंगे। तो बाबा कहते हैं याद करने से ही तुम पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं, पावन बनने सिवाय तुम मुक्ति धाम में भी जा नहीं सकेंगे, पावन तो हर हालत में बनना है, उसके सिवाय तो मुक्ति धाम में भी जा नहीं सकते हो। जीवन मुक्ति धाम में भी पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म आता है, फिर नंबरवार और धर्म आते हैं। सत्युग में भी पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म आता था, फिर नंबरवार और धर्म आए, बाप अंत में आकर सबको दुखों से मुक्त करते हैं, उनको कहा ही जाता है लिबरेटर। तो बाप कहते हैं तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बुलाते भी हो, भगवान को बुलाते भी हो, ओ बाबा आओ हमको पतित से पावन बनाओ। अब टीचर तो पढ़ाते हैं, ये बाबा क्यों कहते हैं भगवान आकर पढ़ाते हैं, तो पढ़ाना एक ही काम है ना, लेकिन उन्होंने तो श्री कृष्ण के कितने चरित्र दिखा दिए, तो भगवान क्या चरित्र करेगा, कुछ भी नहीं, वो तो पढ़ाता है, टीचर तो चरित्र थोड़ी करता है, वो तो पढ़ाता है। तो बाबा कहते हैं तुमने तो सिर्फ कहा हे पतित पावन आओ हमको पतित से पावन बनाओ, तो टीचर फिर पढ़ाते हैं उसके लिए, अब इसमें चरित्र करते हैं क्या, शिव बाबा कोई चरित्र नहीं करते, वो तो सीधा साधा बस ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ाते हैं। तो ये भी पढ़ाई है, बाप ज्ञान का सागर ही आकर ज्ञान देते हैं। अब इसमें चरित्र की तो कोई बात ही नहीं, उन्होंने तो श्री कृष्ण के कितने चरित्र दिखा दिए। बाबा कहते मैं क्या चरित्र करता हूँ, मैं तो केवल पढ़ाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान, अब कोई विकर्म नहीं करना है। जान गए ना हम सारा कर्म कर्म विकर्म की गति को, कौन से कर्म से क्या क्या फल मिलता है, अब कोई विकर्म नहीं करना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। तो विकर्म से बचना है तो क्या करो, कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। दूसरा, ऐसा पावन बनना है, कैसा पावन, जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है, तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। वरदान, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। ज्ञान जो बाबा देते हैं इससे लाइट भी मिलती है तो माइट भी मिलती है, तो दोनों, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। भक्ति मार्ग में किसको विघ्न विनाशक कहते हैं, गणेश जी को। तो भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहकर पूजते हैं, साथ साथ उनको और क्या कहते हैं, एक तो विघ्न विनाशक कहते हैं, दूसरा क्या कहते हैं गणेश को, साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल भी कहते हैं। बहुत उनका दिमाग इतना बड़ा है ना, बहुत ज्ञानी है, तो साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल अर्थात विद्यापति भी मानते हैं, विद्यापति। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं, अब ये विघ्न विनाशक भी और विद्यापति भी, तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं वे कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते। वो तो विघ्न विनाशक हो गए ना, तो वो विघ्नों से हार नहीं खा सकते, क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता है। बुद्धि बुद्धि बाबा देते हैं तो लाइट माइट मिल जाती है, तो हम विघ्नों में कैसे आएंगे। अंधेरा है तो विघ्न होता है ना, अभी कहाँ जा रहे हैं, लाइट नहीं है तो जरूर ठोकर खाएंगे, लगेगा, पर लाइट आ गई तो फिर हम ठोकर थोड़ी खाएंगे। तो बाबा कहते हैं, तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं वो कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते। क्यों, क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता है, लाइट आ गई तो फिर गिरेंगे थोड़ी, पता ये टेबल है तो हम इस ऐसे थोड़ी चलेंगे कि गिर जाएं। तो लाइट माइट कहा जाता है, जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। ऐसे जो विघ्न विनाशक है, अब नॉलेजफुल है तो विघ्न विघ्न नहीं आएंगे। दूसरा, जो विघ्न विनाशक है वो बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हैं। देखो, विघ्न विनाशक है तो बाबा के साथ कंबाइंड है, इसलिए दिखाते हैं ना गणेश जी और कार्तिक दोनों को कहा दुनिया का सैर करके आ जाओ। तो कार्तिक तो गया दुनिया का सैर करने मोर पर बैठ करके, पर हमारे गणेश जी ने क्या किया, माँ बाप का ही चक्र लगाया और माँ बाप को ही समझा वही हमारा संसार है, तो हम बाबा के साथ हैं तो विघ्न विनाशक भी हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो विघ्न विनाशक है बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सिमरण करते रहते हैं, वो कभी विघ्न हार नहीं बन सकते, वो कभी विघ्न हार नहीं बन सकते, विघ्नों से हारेंगे नहीं, वो विघ्न विनाशक होंगे, कभी ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि लाइट भी मिली तो माइट भी मिली, तो वो कभी विघ्न हार नहीं बन सकते। स्लोगन, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो, बुराइयां बाबा को दे दो, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। सब विल कर दो, हल्के हो जाओ बाबा ये सब तुम्हारा, तो विल पावर आ जाएगी। ये अव्यक्त इशारे, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो के अंतर्गत अभी अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाने का अनुभव कराने का समय है। खुद तो बनो अचल अडोल लेकिन औरों को भी अचल अडोल बनाने का समय है, अनुभव कराने का समय है। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ, अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बना देंगे। ज्ञान की हर पॉइंट का अनुभवी बनने के लिए एकांत प्रिय बनो, एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। एकांत प्रिय बनो, एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ, तो अनुभवी मूरत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ौदा से, बड़ौदा मंगलवाड़ी भाई से आए हुए भाई बहने सब हाथ उठाए, देखो कितने आ गए हैं भाई, वेलकम करो इनको। और सब भट्टी करने आए हैं, मैंने सुना बहुत तकलीफ हुई कईयों को, नाइट बस में आए, बस खराब हो गई, ऐसे हुआ क्या, रात को बस खराब हो गई, आधी रात को एक बजे इनकी बस खराब हो गई, तो फिर दूसरी बस कब मिली, फिर मिली कि नहीं मिली जी। अच्छा 8 बजे, तो 1 से 8 बजे तक वहीं थे। अरे बाप रे, देखो हाँ देखो ये सब कितना बड़ा विघ्न पार करके आए हैं, और ताली बजाओ इनके लिए। नहीं तो हमें कहा गया ये लोग सवेरे 5 बजे पहुंच जाएंगे, रात को वहां से निकलेंगे, नाइट बस से आएंगे बड़ौदा से और सवेरे 5 बजे पहुंच जाएंगे, तो 5 बजे तो पहुंचे ही नहीं। फिर हमने फोन किया, राज बहन को फोन किया, भाई क्या हुआ, आए तो नहीं है, तो कह रहे बस ही खराब हो गई रास्ते में। तो मैंने कहा देखो, परंतु फिर ठीक सलामत पहुंच गए ना, कुछ ऐसी बात तो नहीं हुई ना, भले रात भर वहीं खड़े रहे क्या। अच्छा चलो थोड़ा बहुत अच्छा, अभी सब बाबा की याद में बैठेंगे, लेकिन योग के बाद